प्रियंका रोते हुए आगे बोली, मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मेरा नाम प्रियंका है, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो मेरे साथ बड़े ही बदतमीजी से पेश आया करता था। अब जैसे ही प्रियंका ने राजवीर की सारी बातें करना शुरू की, कहीं ना कहीं नानी माँ फिर से तड़प कर रह गई थीं और उसे शांत करने लगी थीं। वो बोली थीं, बेटा शांत हो जा, अब जो हो गया सो हो गया, ये तेरी पुरानी जिंदगी थी। हम जानते हैं कि तेरे साथ पूरी तरह से गलत हुआ है, लेकिन अब तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी दादी माँ है तेरे साथ, हम तेरा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे और तुझ पर इतनी सी भी आँच नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं नानी माँ पूरी तरह से प्रियंका को कंफर्टेबल महसूस कराने में लगी हुई थी और जितना हो सकता था उतना वो उसे शांत कर रही थी। वहीं अरमान ने जब अपनी पकड़ ढीली की तो उसने आस्था को छोड़ दिया था। ड्रेसिंग होने के बाद आस्था देर न करते हुए तुरंत नीचे हॉल में आ गई थी और प्रियंका की सारी बातें भी सुन चुकी थी, लेकिन अरमान की नज़रें पूरी तरह से आस्था पर ही बनी हुई थीं। आस्था की आंखों में आंसू उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन इस वक्त जाकर भी वो उसे चुप नहीं करा सका। फिलहाल जब उसने देखा कि आस्था तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, तब अरमान एक बार फिर तेज़ आवाज़ में बोला था, प्रियंका तुम्हें किसी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे मैं सज़ा ज़रूर दूंगा और ऐसी सज़ा दूंगा कि कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेगा। अरमान की ये बातें सुनते ही कहीं ना कहीं रोती हुई प्रियंका पूरी तरह से शांत हो गई थी। प्रियंका के चुप होने पर आस्था ने भी अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ लिए और तभी आस्था प्रियंका को देखकर बोली थी, हमारे पति जो कहते हैं वो करके रहते हैं। प्रियंका दीदी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, जिस भी राक्षस ने आपके साथ गलत किया है उसे हम इतनी भयानक सज़ा दिलवाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने हाथों से सज़ा देंगे। ये कहते हुए कहीं ना कहीं आस्था पूरी तरह से गुस्से से लाल हो रही थी। तभी अरमान ने उसे संभालते हुए कहा था, तुम्हें किसी को भी सज़ा देने के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। अरमान ने बड़े प्यार से आस्था की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अरमान का ये अंदाज़ देखकर सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं आहान के मन में जो थोड़ी देर पहले कुछ अजीब अजीब ख्याल पैदा हुए थे वो फिर से उभर आए थे। वो मन ही मन सोच रहा था, अरे यार, मेरे भाई तो एकदम रोमांटिक प्यार करने लग गए हैं। अगर मैं अपनी रौनक को कुछ इस तरह का बोल दूं तो सब मुझे ही टीज करना शुरू कर देंगे। लेकिन मजाल है कि भाई को जरा सा भी छेड़ने की किसी की हिम्मत हो। तभी ध्रुव ने आहान को देखा। आहान की हालत देखकर, उसके अजीब से एक्सप्रेशन देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला था, क्यों, क्या सोच रहे हो तुम? ध्रुव की ये बात सुनते ही आहान चौंक गया था और हकलाते हुए बोला, क्या क्या, हाँ क्या सोच रहा हूँ? ध्रुव फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, क्या मैं तुम्हारे मन की बात सुन भी नहीं सकता? मुझे तुम्हारी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये सुनते ही आहान की आंखें और भी बड़ी हो गई थीं। वहीं आहान तुरंत ही अपने मुंह पर उंगली रखकर खड़ा हो गया था और मन ही मन सोचने लगा था कि थोड़ी देर पहले अरमान भाई को लेकर उसके मन में जो ख्याल आ रहे थे, अगर अरमान भाई ने सुन लिया तो उसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो मन ही मन घबराते हुए सोचने लगा, नहीं, अब मैं दिल में भी कोई ख्याल नहीं सोचूंगा। ये सोचकर वो जल्दी से शांत होकर खड़ा हो गया था और ध्रुव उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया था। फिलहाल तभी अविनाश आस्था के पास आया। आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए वो बोला था, गोरी, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। जहां तक मुझे लगता है राजवीर का निशाना पूरी तरह से तुम पर है, क्योंकि एक तो तुम प्रियंका को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाई हो, इस बात का बदला वो जरूर लेगा। जैसे ही अविनाश ने आस्था के सिर पर हाथ रखते हुए ये कहा, आस्था ने तुरंत अपने भाई का हाथ थाम लिया था और बोली थी, आप परेशान मत होइए अविनाश भैया, अरमान जी हमारे साथ हैं, वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। आस्था ने बड़े ही भरोसे और आत्मविश्वास के साथ ये बात कही थी। तभी अरमान आगे बढ़ा और उसने अविनाश का हाथ, जो आस्था के सिर पर था, पकड़कर अपने हाथ में ले लिया था। अविनाश को देखते हुए वो बोला था, जी हाँ मिस्टर सूर्यवंशी, आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बीवी का मैं बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अरमान ने पूरे हक के साथ ये बात कही थी। वहीं अबीर सिंह राठौर, जो कि इस वक्त वहां आ चुका था, वो ये सारा दृश्य देख चुका था। अंदर ही अंदर वो जलकर राख हो रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर वो आगे आया और आकर सबकी ओर देखने लगा। तब तक प्रियंका को ठीक सलामत देखकर उसने तुरंत ही उसके हालचाल पूछे और कहा था कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी उन लोगों के साथ है। कहीं ना कहीं प्रियंका अब भी बहुत गहरे सदमे में थी। उसने तुरंत ही अपनी दादी यानी नानी माँ की गोद में अपना सिर रख दिया था और नानी माँ प्यार से उसे सहलाने लगी थी। तभी नानी माँ ने रौनक को कह दिया था कि वो उसके बेटे बहू को खबर कर दे कि वे लोग सीधा सिंघानिया मेंशन आ जाएं, ताकि वो प्रियंका के बारे में उन्हें सारी जानकारी दे सके। नानी माँ के बोलते ही रौनक ने फोन भी कर दिया था और मिस्टर मनोज के साथ साथ सीमा जी भी तुरंत ही मल्होत्रा मेंशन जाने के लिए निकल चुके थे। वहीं दूसरी ओर सम्राट ने यह ठान लिया था कि उसे जो कुछ भी करना है उसे पूरे एतमाद के साथ करना होगा। उसे गरम गरम नहीं खाना है बल्कि ठंडा करके खाना होगा। पहले भी जल्दबाजी में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारेगा और हर हाल में आस्था को अपना बनाएगा। उसे अगवा करने के लिए उसे चाहे कितने ही दिन क्यों न लग जाएं, लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये सोचते हुए कहीं ना कहीं सम्राट ने अपने आदमियों को सिंघानिया मेंशन से बिना सिक्योरिटी की नजरों में आए काफी दूरी तक फैला दिया था, ताकि वक्त आने पर वो लोग आस्था के बाहर निकलते ही उसे खबर दे सके। कोई सिविल ड्रेस में सब्जी वाला बनकर तो कोई फ्रूट्स वाला बनकर सिंघानिया मेंशन से कुछ किलोमीटर के दायरे में रास्तों के आसपास काम करने लगे थे। सब कुछ सम्राट ने इतना परफेक्ट तरीके से प्लान किया था कि कोई भी इस राज पर शक तक नहीं कर सकता था। वैसे भी सम्राट अब किसी तरह की बेवकूफी नहीं करना चाहता था, वो अपने गुरु की नजरों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। आस्था के शरीर के लिए उसका पागलपन उसे अंदर ही अंदर और ज्यादा बेचैन कर रहा था। ये पागलपन उसे पहचानने भी लगा था कि वो किस हद तक गिर चुका है, और संजना के करीब आने के बाद उसे खुद से एक अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि पहली बार उसने जिंदगी में अपना खुद से किया हुआ वादा तोड़ा था। उसका वादा था कि वो आस्था के अलावा किसी के साथ बेड शेयर नहीं करेगा, लेकिन एक कमजोर लम्हे में अपने फ्रस्ट्रेशन और नफरत के चलते उसने अपनी सारी भड़ास संजना पर उतार दी थी। कहीं ना कहीं उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और खुद से ही छोटी सी घृणा भी महसूस हो रही थी। संजना पर तो वो पहले से ही चिढ़ा बैठा था, लेकिन अब खुद की नजरों में भी वो गिर गया था। लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर कुछ थी तो सिर्फ और सिर्फ आस्था को अगवा करना और अपने गुरु की नजरों में सर्वश्रेष्ठ बनना, क्योंकि अब उसका मकसद केवल आस्था को पाना ही नहीं रह गया था, बल्कि अपने गुरु की नजरों में सबसे स्ट्रांग बनना भी था। वो बस एक बार अपने गुरु के मुंह से ये सुनना चाहता था कि वो अरमान से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। फिलहाल उसने चारों तरफ बहुत ही चालाकी से अपना जाल फैला रखा था ताकि इस बार उसकी योजना में कोई भी गलती ना हो।
फिलहाल वहीं दूसरी ओर अबीर का वहां आ जाना अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आया था। सबसे पहले जाकर उसने अबीर से मुलाकात करते हुए बोला था, मिस्टर राठौर, वैसे ही पहले से ही आप हम लोगों पर काफी सारे एहसान कर चुके हैं और आप हमारी और मदद करना चाहते हैं। नहीं नहीं मिस्टर राठौर, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगा था कि आप वापस अपने होम टाउन लौट गए होंगे, और वैसे भी मैंने आपकी सारी ज़मीन जायदाद आपको लौटा दी है, तो फिर आपका यहाँ रहने का क्या कारण है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही अरमान ने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ ये बात कही, कहीं ना कहीं अबीर अंदर ही अंदर सिहर गया था। कहीं ना कहीं अरमान का इस तरह बोलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल भी कम नहीं होने दी, क्योंकि अपने अंदर की नफरत और जलन वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहता था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर अरमान को जरा सा भी अंदाजा हो गया कि अबीर अभी भी पूरी तरह से आस्था पर लट्टू है और वो अब भी अपनी आखिरी सांस तक उसे पाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो अरमान सिंघानिया उसे शहर से तो क्या इस दुनिया से ही गायब करवा देगा और उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा। और अबीर सिंह राठौड़ अब दोस्त बनकर ही एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। हो सकता था कि उसकी ये आखिरी कोशिश कामयाब हो जाए। फिलहाल उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट सजा रखी थी। अपने गुस्से और पागलपन को उसने किसी को भी देखने नहीं दिया। हल्की मुस्कुराहट के साथ अरमान को देखते हुए वो बोला था, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अरमान, लेकिन अब ये मेरा भी परिवार है और अपने परिवार को इस हालत में छोड़कर मैं कभी भी नहीं जा सकता। एक पल के लिए अबीर ने अपनी टोन बिल्कुल मायूसी भरी कर ली थी। वहीं दादाजी अब थोड़ा सा अरमान को देखते हुए बोले, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? अबीर बेटे ने जब हमारी बहुत मदद की है, उस वक्त जब हमें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा कि तुमने उसकी सारी जमीन जायदाद उसे लौटा दी। लेकिन बेटा अभी राजवीर का खतरा टला नहीं है, और जितने लोग हम मजबूती से एक साथ खड़े रहेंगे उतना ही हम राजवीर का मुकाबला भी कर पाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को खत्म करने के लिए हमारे घर का एक मामूली नौकर भी काफी है। लेकिन बेटा ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि राजवीर जिंदल कितना बड़ा सनकी और बेरहम इंसान है। उसे खत्म करने के लिए, उसे चारों तरफ से फंसाने के लिए कोई एक इंसान काफी नहीं होगा, न जाने कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसमें मेरे ख्याल से बेटा अबीर का हमारे साथ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, कहीं ना कहीं अरमान उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी आस्था ने तुरंत अरमान के हाथ पर हाथ रखकर कहा था, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरमान जी, और वैसे भी अबीर जी ने हमारी बहुत मदद की है, और जब तक ये राजवीर का किस्सा खत्म नहीं हो जाता तब तक अबीर जी को यहीं रहना चाहिए, और वैसे भी बहुत अच्छी बात है कि आपने उनकी मदद की और उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें वापस लौटा दी, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। ये सुनकर अरमान बिल्कुल शांत चेहरे के साथ वहां खड़ा हो गया था, लेकिन उसके उस शांत चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कितना बड़ा तूफान वो अपने अंदर समेटे हुए खड़ा हो। फिलहाल अब देर न करते हुए आस्था ने गहरी नजरों से नानी माँ की ओर देखते हुए कहा, हमें प्रियंका दी को कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। इसके बाद तुरंत ही धीरे धीरे रौनक और नानी माँ मिलकर प्रियंका को सहारा देकर कमरे की ओर ले जाने लगे। उन्हें नानी माँ के कमरे में ही ले जाया गया, क्योंकि नानी माँ ने साफ कह दिया था कि जब तक प्रियंका पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो उनके साथ ही उनके कमरे में रहेंगी। अब आस्था ने वंशिका से कहा था, थैंक यू सो मच वंशिका, तुम्हारे बनाए हुए एंटीडोट से अब काफी ज्यादा मदद मिली है। देखो प्रियंका दीदी अब काफी हद तक ठीक हो गई हैं, हालांकि उनके रूह पर जो जख्म लगे हैं उन्हें भरने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा प्यार और परिवार का माहौल बहुत जल्दी उनके सारे जख्म भर देगा। कहीं ना कहीं आस्था ने भी समझदारी से वंशिका का शुक्रिया अदा करते हुए यही बात दोहराई थी, लेकिन वंशिका ने तुरंत ही आस्था से कहा, ये मेरा भी परिवार है आस्था, और अपने परिवार के लिए कुछ करना कोई एहसान नहीं होता, इसलिए इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो ठीक है, और हाँ अब ये दुख का दौर पूरी तरह से खत्म कर दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, अरमान भैया बिल्कुल ठीक हो गए हैं और हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। और जहाँ तक उन दुश्मनों की बात है तो अब हमें बस एक सही मौके का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही सही मौका मिलेगा हम उन्हें भी अच्छी खासी सजा देंगे, और ऐसी सजा देंगे कि इस बार वो मौत से भी बचकर जिंदा नहीं निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं वंशिका ने अपने भाई की मौत को याद करते हुए नफरत से राजवीर का नाम लिया था। आखिरकार वो राजवीर को कैसे भूल सकती थी। तभी अबीर भी आगे आया और बोला था, वंशिका जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वैसे भी अब वक्त आ चुका है उसका सीधा सामना करने का। पहले ही हमने बहुत बड़ी गलती की थी कि हमने उसे ठीक तरह से मरते हुए नहीं देखा। हमें लगा था कि इतनी मारपीट के बाद और उसकी बीवी की लाश को जलाने के बाद तो शायद वो मर ही चुका होगा, लेकिन इस तरह से उसका जिंदा लौट कर आना ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, इस बार हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं अबीर के इस बात का समर्थन करते हुए सिर हिलाया।